नंदा बस सर्विस, सफ़ा नंबर 25। जम्मू में जब पुलिस के केस रोज़ बरोज़ बढ़ते ही गए तो घर वालों ने फैसला किया कि बच्चों को मौत के मुंह से महफूज रखने के लिए कुछ अरसा के लिए श्रीनगर भेज दिया जाए। श्रीनगर के लिए हम नंदा बस सर्विस की लारी में सवार हुए। उसके अंदर और बाहर चारों तरफ मोटे मोटे हरूफ में काली और सुर्ख स्याही में नंदा हाउस बुजदारी सस्ती के इश्तहार ही इश्तहार थे। नंदा हाउस जम्मू शहर में कपड़े की सबसे बड़ी और कुशादा दुकान थी। उसमें 8-10 करिंदे हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे, लेकिन दुकान के मालक नंदा साहब खुद भी बनफ्स नफीस सुबह से शाम तक बड़े अनहमाक से काम किया करते थे। वह बड़े फरबा तन व तोश के बेहद लहीम व शमीम आदमी थे। वो अपना वज़न काबू में रखने के लिए हर रोज़ अली सुबह बाकायदगी से वर्जिश किया करते थे। चुनाचा वो सड़क पर एक दो फरलांग लिस्टम पिस्टम चहलकदमी किया करते थे, जिस तरह बादबानी जहाज़ सतह आप पर हचकोले खाता है और फिर लकड़ी की 2-2.5 फुट ऊंची चौकी पर खड़े होकर बरसरे आम 10-12 छलांगे लगाया करते थे। अफजाने से के इन तकाजों को पूरा करके नंदा साहब अपनी दुकान के फर्श पर टांगे पसार कर वह तकिए के सहारे बैठ जाते थे। ग्राहक छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हज़ारों का माल का खरीदार हो या 2-3 गज मलमल का तलबगार, नंदा साहब सब के साथ यकसा अखलाक अनहमाक और खंदा पेशानी से पेश आते थे। उनके करिंदे गाहकों के सामने कपड़ों के थानों पर थान खोल खोल कर ढेर लगाते जाते थे और छोटे से छोटा गाहक भी वहाँ से इज्जत नफ्स का ऐसा एहसास लेकर उठता था कि फिर उम्र भर उसके लिए किसी और दुकान का मुंह देखना दुश्वार हो जाता था। यूं भी थान में से कपड़ा फाड़ते वक्त नंदा साहब 1-2 उंगल कपड़ा गाहक के हिस्से में बढ़ा देते थे और कीमत के मोल में तो ऐसा कुछ हंसमुख रवैया अख्तियार करते थे गोया इनका असली मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि खरीदार का दिल खुश करना है। कारोबार की इस खुशकारी के साथ साथ नंदा साहब को इश्तहारबाजी के फन पर भी यद तोले हासिल था। शहर और गांव के दर दीवार हो या जंगल में दरख्तों के तने, दूर दराज वीरानों में पथरीली चट्टानें हों या आबादियों में बिजली के खंभे, हर जगह कोने कोने और गोशे गोशे में नंदा हाउस बाजारी सस्ती का कतबा मोटे मोटे हरूफ में निगाहों का ताकब करता था। देखते ही देखते नंदा साहब के कई कारोबार को 4 चांद लग गए। बाजारी की दुकान तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। अब उन्होंने लाहौर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर तक एक मुनज्जम बस और टैक्सी सर्विस भी शुरू कर दी थी। साथ ही जम्मू में पहला सिनेमा हॉल बनाने और चलाने का सिरा भी उन्हीं के सर रहा। महाराजा हरी सिंह की खुशामद में उन्होंने इसका नाम हरी टाकीज रखा। चापलोसी और खुशामद के फन में भी नंदा साहब बड़े अहले कमाल थे। आम खरीदारों से लेकर वालियाने रियासत की खुशनुदी हासिल करना तो उनके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन दाएं हाथ से वो अपने भगवान को राज़ी रखने के लिए भी बड़े जतन करते थे। उनकी प्याजी और दाद दहश के अजीबोगरीब किस्से मशहूर थे। ये बात ज़बान जद खासो आम थी कि शाम को दुकान बढ़ाकर वो बहुत सी हिंदू बेवाओं, यतीमों और मोहताजों के हाँ बजाते खुद जाया करते थे और एक मखसूस रकम का गुप्त दान उनमें तकसीम करने के बाद अपने घर में पांव रखते थे। गर्मी हो या जाड़ा, बारिश हो या आंधी, कारोबार में नफ़ा हो या नुकसान, खुफिया और खामोश खरात के इस तसलसल में नागा ना पड़ता था। जिस पाबंदी से नंदा साहब माया धर्म का पालन करते थे, इसी तरह वो हिंदू जाति की सियासी बरतरी कायम रखने के लिए भी खुफिया तौर पर मुसलसल जद्दोजहद करते रहते थे। शहर की बहुत सी हिंदू तंजीमें उनकी माली अनानत की महरूने मिन्नत थी। ख़ास तौर पर हिंदू महासभा और जनसंघ के तरबीती अखाड़ों पर उनकी बड़ी नज़रें अनायत थी। उन अखाड़ों में हिंदू नौजवानों को जंगी करतब सिखाए जाते थे ताकि मुसलमानों के साथ मुकाबले में वो इन पर हमेशा गालिब आएं। एक खुफिया क्लब में हिंदुओं को खुशी ट्रेनिंग देकर जवानों का हरवल दस्ता तैयार किया जाता था कि जब मुसलमान ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालें तो उस पर हमला करके इसे धर्म भ्रम कर दिया जाए। नंदा साहब इन तमाम इंतजामात की बड़ी खामोशी और खुश दिली से सरपरस्ती फरमाया करते थे। इसके साथ साथ ईद मिलादुन्नबी और मुहर्रम के जुलूसों के लिए पानी की कुछ सबीलें भी वो बड़ी बाकायदगी से लगाया करते थे। नंदा बस सर्विस की जिस लारी में हम सवार हुए उसमें 15 के करीब और मुसाफिर भी थे। एक प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज का कश्मीरी पंडित प्रोफेसर था जो अपनी पंडितानी के साथ मौसम गर्मा की तातीलात गुजारने श्रीनगर जा रहा था। उस शिद्दत की गर्मी में पंडितानी ने अभी से ऊनी फर्न पहन रखा था और सर से पांव तक पश्मीने की गर्म चादर ओढ़ रखी थी। इसके एक हाथ में पानी की गड़वी थी और दूसरे हाथ में एक कांगड़ी थी। कांगड़ी निसफ के करीब राख से भरी हुई थी ताकि पेच दर पेच पहाड़ी सड़क के मोड़ों पर जब पंडितानी का जी मतलाए तो वह बेतकल्लुफी से उसमें कह करती जाए। ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर एक हदेड़ उम्र की गोरी चिट्टी भारी भरकम औरत चिनार के दरख्त की तरह फैली हुई थी, जिस पर खजान के मौसम में पतझड़ का अमल तेज रफ्तारी से शुरू हो चुका था। उसका आदमी उसके ऐन पीछे वाली सीट पर बुराजमान था। इसने गबेरडेसन की बर्जस और बंद कुल्ले का चुस्त कोट पहना हुआ था। सर पर स्लेटी रंग की तिरछी फ्लैट हैट थी जिसमें मोर के कई पर अवेजा थे। आंखों पर मोटे मोटे चश्मों शीशों की स्याह ऐनक थी। कंधे से ब्राउन चर्मी थैला लटक रहा था जिसमें कैमरा, दूरबीन, टॉफियां और शराब की एक लंबी सी बोतल थी। वक्तन फवक्तन वो इस बोतल से चुस्की लगाकर थैले से कैमरा, दूरबीन और टॉफियां बरामद करता था और अपने पहलू में बैठी हुई एक छुटछुरी सी खूबसूरत पारसी लड़की को खिलौनों की तरह दिखाता था। बस में दाखिल होते ही उस शख्स ने जुमला मुसाफिरों को खबरदार कर दिया था कि वो बम्बई के एक बहुत बड़े आगा हैं, हर साल गर्मियों में शिकार खेलने कश्मीर आते हैं और महाराज अधीर राज के मेहमान होने का शर्फ पाते हैं। इस बार भी जब वो श्रीनगर पहुंचेंगे तो उम्मीद वासक है कि खबर पाते ही हिज हाइनेस इन्हीं हाथों हाथ लेंगे और शाही मेहमान खाने की जीनत बनाएंगे। मुसाफरों में कौन ऐसा काफर था जो इस उम्मीद के बर आने पर फिर फौर ईमान न ले था, क्योंकि जो नसीमे भारी ऐसे गंचा उम्मीद कुवा करती है इसे आगा साहब अत्यातन बम्बई ही से पारसी लड़की की सूरत में अपने साथ लिए आए थे और वराज महल के लिए परवाना राहदारी की तरह उनके पहलू में बैठी मज़े मज़े से टाफियां खा रही थी। आगा साहब की तकरीर दिल पजीर का मुसाफरों पर खातर ख्वा असर हुआ और वह अपनी अपनी सीट पर और भी ज़्यादा दुबक कर सुकड़ गए। सिख ड्राइवर भी मरगूब नज़र आता था। उसने क्लीनर को डांटा कि वक्त ज़ाया ना करे और गाड़ी को फौरन स्टार्ट करे। क्लीनर ने उछल उछल कर ज़ोर ज़ोर से हैंडल घुमाया। गाड़ी इंजन ने दो चार एहतजाजी सिसकियाँ ली और पीठ कड़क कर चालू हो गया। बस के पहियों ने हरकत की तो गर्म शाल में लिपटी हुई पंडितानी ने भी आगाज़ सफ़र का शगुन लिया और आओ 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 करके कांगड़ी में अपनी पहली कह कर डाली। शहर से निकलकर रामनगर से गुजरे तो महाराजा और महारानी के महलात आए। आगा साहब पारसी लड़की के सर से सर जोड़ कर बैठ गए और सरगोशियों में से राजमहल की दास्तान अलफ लैला मज़े मज़े लेकर सुनाने लगे। फ्रंट सीट पर छाई हुई खजान दीदा बेगम के ये बात नागवार गुजरी और उसने अपने नाजक से संदली पंखे की डंडी घुमाकर आगा साहब का मुंह पारसी लड़की के कानों से इस तरह अलग कर दिया जैसे बिल्ली के मुंह से छिछड़ा खींच लिया जाता है। आगा साहब ने अपने चकंदर जैसे चेहरे पर बड़ों के छत्ते की तरह लटकती हुई मूंछों को दोनों हाथों से मरोड़ा और खुशनत से पंडितानी को घूरा जो कांगड़ी में मुँह दिए बड़ी पाबंदी से अपना फरीजा अस्तफराह अदा कर रही थी। ये बस है या चमार खाना, आगा साहब गरजे। चारों तरफ बदबू ही बदबू फैला रखी है। तौबा तौबा, नाक में दम आ गया। आगा साहब की नाराजगी भांप कर क्लीनर अपनी जगह से उठा और पंडितानी को देल दिखा कर सबसे अलग थलग बस के आखिरी कोने में बिठा दिया। पंडितानी को तो खैर आराम हो गया कि वो जी जब जी चाहे खुल कर बेरोक टोक कह करती जाए, लेकिन कश्मीरी पंडित प्रोफेसर साहब का नकल तमन्ना बर्बाद हो गया था। जब से इन्हें मालूम हुआ है कि आगा साहब के महाराजा हरी सिंह के साथ ज़ाती मरासम है तो इन्होंने दिल ही दिल में तय कर लिया है कि वो इस वसीला को अपनी मकसद बरारी के लिए ज़रूर काम में लाएंगे। प्रोफेसर साहब कई बरसों से तगदो कर रहे थे कि किसी तरह उनका तबादला प्रिंस ऑफ विल्स कॉलेज जम्मू से श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर हो जाए, लेकिन कामयाबी ना होती थी। अब बस में आगा साहब को हम सफ़र देखकर इन्हें ख्याल आया कि शायद ये फरिश्ता रहमत उनकी हाजत रवाई के लिए ही गैब से नाजल हुआ है। चुनाचा वो बड़ी मेहनत से खिसक खिसक कर आगा साहब की सीट के करीब से करीब तर होने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ अजब नहीं कि श्रीनगर तक पहुँचते पहुँचते वो पारसी लड़की समेत आगा साहब को शीशे में उतार भी लेते, क्योंकि कश्मीरी पंडित की शान ये है कि उसे किसी दफ्तर की अदना से अदना आसामी पर तैनात कर दिया जाए तो दीमक की तरह सारे अमले को अंदर ही अंदर चाट कर ऊपर वाली कुर्सी पर सर निकालता है। लेकिन क्लीनर ने इसे पीछे धकेल कर सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब पंडितानी तो बड़े इत्मीनान से कांगड़ी में मुँह ठों से बैठी थी और प्रोफेसर साहब बासिद हसरत वयास इन खुशकिस्मत मुसाफरों का मुँह तक रहे थे जिन्हें अब भी साहब की सीट का कुर्ब हासिल था। रामनगर से ज़रा आगे सिख ड्राइवर ने बस की रफ्तार एहतरामन हल्की कर दी, क्योंकि यहाँ पर नशेब में दरख्तों के झुंड के दरमियान पंज पीर की कहना और बसीदा सी कब्रें थीं। कुछ मुसाफिरों ने गर्दन झुकाकर पंज पीर को सलाम किया। पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला था और बस घाँव घाँव करती पेच दर पेच सड़क पर चलने लगी जो भूरे पहाड़ और सब्ज दरख्तों के साथ काले रिबन की तरह लिपटी हुई, कभी ऊपर उठती थी, कभी नीचे लटकती थी और कभी बड़े बड़े बेजवी दायरे काट कर नज़र से ओझल हो जाती थी। एक तरफ संगला चटाने ही चटाने थी, दूसरी तरफ पुरमहेब घराई ही घराई, जगह जगह पहाड़ी झरनों का पानी, छोटी छोटी शफाफ चादरें बनकर चट्टानों के ऊपर बहता। सड़क के किनारे पक्के चबूतरे और हौज बने हुए थे और झरनों का पानी लोहे के नल के जरिए 24 घंटे उन पर गुजरता रहता था। हिंदू डोगरे इन नलों के धार के नीचे खड़े होकर नहाते भी थे, कपड़े भी धोते थे, पानी भी पीते थे। मुसलमानों को इन चबूतरों के पास तक फटकने की इजाज़त ना थी क्योंकि उनके छूने से चश्मे का साफ पानी नापाक होकर बरशट हो जाता। जो बचा खचा मस्त अम्बल पानी चबूतरों से बहकर निकलता था उसकी निकास सड़क से दूसरी जानब निशेब की तरफ थी, जहाँ से ये इस सर नौ एक बीमार सी अजू बनकर नीचे की तरफ रवा हो जाता था। इस सेकंड हैंड पानी को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए मुसलमानों को खुली छुट्टी थी। डेढ़ दो घंटे की मुसाफत के बाद ड्राइवर ने बस का पानी बदलने के लिए एक चश्मे के पास पड़ाव किया और मुसाफरों को वार्निंग दी कि यहाँ से चलकर अब वो उधमपुर पहुँच के रुकेगा, इसलिए जिसने कुछ खाना पीना हो वो यहीं से खा पी कर चले। सड़क के किनारे एक छप्पर में हलवाई और सोडा वाटर की दुकान थी। एक थाल में बासी पकौड़े थे जिन पर कुछ मक्खियाँ बेदिली से मंडला रही थी। दूसरे थाल में लड्डू थे जिन पर श्रीनगर बान हाल रोड की गर्द इस कदर तह तर तह जमी हुई थी कि उस पर मक्खियों ने भी बनभाना छोड़ दिया था। लकड़ी के बरादे में लतपत बर्फ की सेल एक मैले से टाट में लिपटी हुई थी और लेमोनेड की बहुत सी बोतलें बेतरतीबी से सामने पड़ी थी। सबसे पहले दुकानदारों ने पत्तों के दोने में पकौड़ियाँ और लड्डू डालकर लेमोनेड की एक एक बोतल के साथ बस के ड्राइवर और क्लीनर को नजराना दिया। आगा साहब अपनी बेगम और पारसी लड़की को लेकर साये में एक चढ़ान पर बैठ गए और अपनी थर्मस शराब गिलास और सैंडविच निकालकर पिकनिक मनाने लगे। बाकी मुसाफिरों ने लेमोनेड की बोतलों पर यूरश की। दुकानदार ने चार चार लड्डू और कुछ पकौड़े डालकर बहुत से दोने तैयार कर रखे थे। जो मुसाफिर लेमोनेड तलब करता उसे मिठाई का एक दोना भी ज़बरदस्ती खरीदना पड़ता था। बाकी सब मुसाफिर तो खैर अपनी अपनी बोतल और गिलास और बर्फ लेकर छाँव में बैठ गए, लेकिन 7-8 मुसलमान पैसेंजरों को लेमोनेड पीने में बड़ी देर लगी। दुकान से बाहर कोने में एक टोकरी लटक रही थी, उसमें कांच का एक मैला सा गिलास ऊंधा पड़ा हुआ था। मुसलमान खरीदार उस गिलास को उठाकर फकीरों की तरह हाथ फैलाए दुकानदार के सामने खड़ा हो जाता। दुकान वाला दूर ही दूर से उसमें बर्फ की डली चटाक से फेंकता और फिर बोतल खोल कर 1.5-2 फुट की बुलंदी से गिलास में लेमोनेड अडेल देता था। कुछ जहाँ खरीदार के हाथ पर पड़ती कुछ छींटे उसके कपड़ों पर उड़ते थे और 2-3 घूंट बोतल में बच रहते थे, जिसे मुंह लगाकर और डकार मारकर हलवाई खुद हजम कर लेता था। लेमोनेड पीकर हर मुसलमान अपना गिलास धोकर दूसरे खरीदार के लिए बाहर वाली टोकरी में लटका देता था। बस का ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाकर जल्दी मचा रहा था, क्लीनर भी बेसब्री से आवाज़ें दे रहा था। आगा साहब अलग नाक भौं चढ़ा रहे थे। अलबत्ता कश्मीरी पिंडक प्रोफेसर मुतमैन बैठे थे। इन्होंने हलवाई की भट्टी से पंडितानी की कांगड़ी में नई राख मुफ्त भर ली थी और मौका पाकर आगा साहब के साथ अपनी गुफ्तगू की तमीज भी बांध ली थी। क्लीनर से साज बस करके उन्होंने अपनी जगह बदल ली थी और पंडितानी को पिछली सीट पर अकेले छोड़कर अब वो आगा साहब के बिल्कुल करीब आ बैठे थे। बस दोबारा रवाना हुई तो ताज़ा दम थी, लेकिन ड्राइवर का मूड बहुत जल्द ख़राब हो गया। सड़क पर ताहद नज़र तितर बितर इंसानों की लाइन ही लाइनें लगी हुई थी। मैले मैले भूरे भूरे फटे पुराने कपड़ों में मलबूस खमीदा कमर लोग दो दो तीन तीन मन वजन उठाए पीठ पर उठाए रिंग रिंग कर चढ़ाई चढ़ रहे थे, जैसे दीवारों पर चोंटियों की बेतरतीब कतारें चल रही हों। इन्होंने खुशक घास के बने हुए चप्पल पहने हुए थे और इनके तमतमाए हुए चेहरे पसीने में शराबोर थे। ये कश्मीरी मुसलमानों की कौम नजीब व चरब दस्त व तर दिमाग के नुमाइंदे थे, जिन्हें हरफे आम में हाथू कहा जाता था। मौसम सरमा के शुरू होते ही वो अपना फरदौस बर्रुए ज़मीन छोड़कर पपयादा काफला दर काफला पंजाब के मैदानों में उतर जाते थे। उनकी माएँ बहनें और बेटियां तो अपने बर्फ से घिरे हुए छोटे छोटे 24 घरों में सारी सारी रात कड़वा तेल जलाकर कलीन बुनती थी या शाल या गलीचे काटती थी या फूलदार नमदे बनाती या अखरोट की लकड़ी तराश कर नाजक नाजक सिगरेट केसों तपाइयों और फूलदानों पर नश्को नगार खोती थी, जिन्हें मुकामी साहूकार औने पौने दामों खरीद कर सिहों के हाथ बड़ी बड़ी कीमत पर बेच डालता था। सुनसान रातों में बर्फानी हवा के छक्कड़ दरख्तों और दीवारों और चट्टानों से टकरा कर खौफनाक चीखें मारते थे। वक्तन वक्तन बर्फ के बड़े बड़े तोदे छतों से गिर कर सन्नाटों में जलजलों का अरताश पैदा करते थे। तेल के चिराग गुल हो जाते थे, कांगड़ियों की आग सुलग सुलग कर राख हो जाती थी, लेकिन लकड़ी के छोटे छोटे قابقوں میں محبوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے ہاتھ میں لگاتار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑکتے ہوئے دلوں سے وہ کبھی حضرت شاہ ہمدان کی حقائق میں مگن ہو جاتی تھیں جنہوں نے وادی کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کی تھی، کبھی وہ للہ عارفہ کے گیتوں میں صبر و قرار کا سہارا ڈھونڈتی تھیں۔ صبر بیٹا، صبر، صبر تو ایک سنہری پیالہ ہے، یہ اتنا بیش قیمت ہے کہ اسے خریدنے کا ہر کسی کو یارہ نہیں۔ صبر بیٹا، صبر، صبر تو نمک، مرچ اور زیرے کا تیز مرکب ہے، یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔ جب کبھی برف و باراں کا طوفان تنہائی کی راتوں کو اور بھی تاریک اور طویل کر دیتا تھا تو ان کے شوق کی گہرائیوں سے حبہ خاتون کے درد و فراق کے نغمے لہرانے لگتے تھے۔ ویو میانہ پوشے منو مدنو، میں سب رہ گزروں پر پھولوں ہی پھولوں کی سیج پچھا دوں گی، اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب آ جاؤ، آؤ کہ ہم مرگ زاروں میں یاسمن نسرین اور گلاب کے پھول چنیں، آؤ کہ ہم دونوں کنار دریا چلیں، ساری دنیا نیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے، میں تیرے لیے سراپا انتظار بیٹھی ہوں، اے میرے پھولوں سے پیار کرنے والے محبوب آ جاؤ۔ ویو میانہ پوشے مدنو، حضرت آدم تو دانہ گندم پیداش میں خلد سے نکلے تھے، لیکن ڈوگرا راج میں کشمیری مسلمان دانہ گندم کی تلاش میں اپنی جنت ارضی سے نکلنے پر مجبور تھا۔ سردیاں آتے ہی وہ گلمرگ، گندریل بل، اچھا بل، تراغ بل، بانڈی پور اور پان پور کے کوہزاروں اور مزاروں سے نکل کر پنجاب کی دور دراز منڈیوں میں پھیل جاتے تھے، دن بھر گلے اور لوہے اور کپڑے کی بار برداری کرتے تھے، بسوں اور تانگوں کے اڈوں پر سامان ڈھوتے تھے، لکڑی کے ٹالوں پر لکڑیاں پھاڑتے اور شام کو مرغی کے بچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے گروہوں میں اکٹھے بیٹھ کر کچھ چاول ابال لیتے تھے، خشکا رات کو کھا کر کھلے آسمان تلے سو رہتے تھے اور صبح اٹھ کر رات کی بچی ہوئی پچ میں نمک ملا کر دن کا کھانا بنا لیتے تھے۔ اسی طرح خون پسینہ ایک کر کے گرمیوں میں جب وہ کچھ نقدی بچا کر اور دو ڈھائی من سامان پیٹھ پر لاد کر اپنی جنت سے گم شدگی کی طرف واپس لوٹتے تھے تو کہیں کسٹم والے ان کا مال لوٹتے تھے، کہیں کوئی ڈوگرا سردار بس سے عام ڈرا دھمکا کر ان کی پونجی ہتھیار لیتا تھا، کہیں پولیس اور محکمہ مال کے اہلکار انہیں سرے راہ پکڑ کر کئی کئی دن، کئی کئی ہفتے مفت کی پیغار میں لگائے رکھتے تھے۔ جوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرا حکومت کے لا تعداد ٹیکسوں میں جکڑا رہتا تھا، پھولوں پر ٹیکس، سبزی پر ٹیکس، بھیڑ بکری اور گائے پر ٹیکس، چولہا ٹیکس، کھڑکی ٹیکس، اون ٹیکس، شال ٹیکس، نجار اور خیاط پر ٹیکس، مزدور اور ممار پر ٹیکس، نان بھائی اور لوہار پر ٹیکس، ملا اور کمہار پر ٹیکس، ارباب نشاط پر ٹیکس، فقط ایک حجام تھا جو ٹیکسوں کی مکڑی کے جالے میں کسی وجہ سے گرفتار نہ تھا۔ کشمیری مسلمانوں کا مال و متاع تو ہر وقت ریاست کے اہلکاروں، خفیہ نویسوں، رئیسوں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر ہی رہتا تھا۔ اس غریب کی جان بھی اپنی سرزمین میں بے حد عذراں تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمانوں کی زندگی کی قانونی قیمت مبلغ 2 روپے تھی، لیکن اگر کوئی سکھ یا ڈوگرا کسی مسلمان کو جان سے مار ڈالتا تھا تو عدالت قاتل پر 16 سے 20 روپے تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ 2 روپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی رقم خزانہ آمرہ میں داخل ہوتی تھی۔ جس وقت انگریزوں نے اس جنت اراضی کو ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تو یہ نرخ ذرا بالا ہو گیا، کشمیر کا سودا 75 لاکھ روپے پر طے ہوا تھا۔ اس وقت کی آبادی کے حساب سے بشندوں کی قیمت 7 روپے فی کس کے قریب پڑی تھی۔ ڈوگرا راج میں کسی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پا سکی۔ شروع شروع میں گاؤ کشی کی سزا موت تھی، ملزم کو رسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹا جاتا تھا اور پھر برسر عام پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزا 10 سال قید و مشقت ہمیشہ رہی۔ کئی جگہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھیڑ یا بکری قربان کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی، جو کبھی ملتی تھی کبھی نامنظور ہو جاتی تھی۔ ان سب دشواریوں، رکاوٹوں، پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری ہاتھو اپنی سرزمین کے ساتھ والوانہ طور پر وابستہ تھا۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اسے اجرت بھی زیادہ ملتی تھی، بگار میں کوئی نہ لیتا تھا اور بڑا گوشت کھانے پر قید کی سزا تھی نہ موت کی، لیکن گرمیاں آتے ہی وہ رسے تڑا کر بھاگ اٹھتا اور اپنا مال و متاع پیٹھ پر لاد کر پا پیادہ کشاں کشاں اپنی دور افادہ وادیوں کی راہ لیتا تھا۔ بانحال سری نگر روڈ پر جا بجا ان کے قافلے اپنی جنت غم گشتہ کی طرف رواں دواں تھے۔ ان کو دیکھ کر پہلے تو ہماری بس کے ڈرائیور کی رگ ظرافت پڑکی، ایک موڑ پر بھاری بھرکم بوجھ تلے دبے چند خمیدہ کمر कश्मीरी सड़क के बीच आस्ता आस्ता चढ़ाई चल रहे थे। ड्राइवर ने ऐन उनके पीछे पहुंचकर जोर से हॉर्न बजा दिया। वो खौफ से कांप उठे और हवास होकर एक दूसरे से टकराए। कोई लड़क कर घुटनों के बल गिरा, कोई बस के मगराड़ से टकराया, किसी ने लजाजत से हाथ बांध कर ड्राइवर की मिन्नत की, कुछ मुसाफर खिसियानी सी हंसे। आगा साहब ने जोरदार कह के बुलंद की, यह नौजवान पारसी लड़की इस नज़ारे से खास तौर पर महफूज हुई। उसने झटपट आगा साहब का कैमरा लिया और सड़क पर गिरते पड़ते बदहवास लोगों की तस्वीरें उतारने लगी। फोकस ठीक करने के लिए आगा साहब ने लड़की का सर अपने सीने से लगाकर दोनों हाथों से थाम लिया। उनकी बेगम ने संदली पंखे की डंडी उनके कान में चुभो कर इसका बंदोबस्त में रखना डाला और बस शादा व फरहाम घाव घाव करती अगले मोड़ पर पहुंची। यहां भी हाथों के साथ वही तमाशा हुआ, फिर इससे अगले मोड़ पर। तीन चार मोड़ों के बाद सब की तबीयत इस दिल पसंद मशगले से सैर होगी। अब अगर कोई कश्मीरी सड़क के दरमियान नजर आता तो ड्राइवर के मिजाज का पारा चढ़ जाता और वह स्याह चश्मान कश्मीर की आल औलाद को कई पुश्त तक बड़ी गलीज गालियां देता। क्लीनर भी एक मोटा सा सोंटा लेकर बस के दरवाजे में खड़ा हो गया था और इसे घुमा घुमा कर रास्ता साफ करने में मसरूफ हो गया। अपने बोझ के तले दबे हुए बेचारे कश्मीरी बीबीसी से परेशान होकर सड़क पर इधर उधर भागते थे और पहाड़ी चलवानों पर सायादार दरख्तों के नीचे पक्के चबूतरों पर बैठे हुए डोगरों के लिए बड़ी ज़ियाफ़त तबाह कसमाम फ्राहम करते थे। लंबे लंबे कुर्तों और चूड़ीदार पजामे में मलबूस बड़ी बड़ी मूछों वाले डोगरे रियासत में शाही औलाद का दर्जा रखते थे। उनके पास वसी जंगलात हों या एक दो एकड़ अराजी, वो अपने नाम के साथ राजा या ठाकर या दीवान का दुम छल्ला जरूर लगाते थे और छाती निकाल कर ऐसे दम खम से चलते फिरते थे कि जैसे वो अभी अभी राजमहल के पंगोड़े से अंगूठा चूसते हुए बरामद हुए हों। उनकी राजियां मुसलमान मजारे काश्त करते थे, उनके मवेशी मुसलमान बच्चे जंगलाती चराहों में चराते थे और वो खुद आलती पालती मारकर बैठे चिलम पिया करते थे। चिलम पीने के अलावा उन्हें अपने गुठे हुए सर पर बरसे आम तेल की मालिश करवाना भी उनका महबूब मशगला था। मालिश के बाद वह अपनी चंदिया पर लहराती हुई 7-8 इंच लंबी बोदी को मूंछों की तरह ताव देते थे और दोनों हथेलियों के दरमियान रस्सी की तरह बांट कर पेच तर पेच कार स्क्रू की मानद ऐंठ लेते। इनकी अजीबुल खलकत डोगरों के आसपास शीशम और दियार और चीड़ के दरख्तों के नीचे अगर कोई बांकी तिरछी डोगरी सर पर तेल पित्तल की दमकती हुई गागर उठाए लटकती मकती गुजर जाती थी तो पहाड़ की पगडंडियों पर गोटे और किनारी और लच्छेदार झालरें हिल झालरें फैल जाती थी और सड़कों पर चलती हुई बसों के ड्राइवर मुंह उठा कर इन डोगरियों के नज़ारे में इतने महव हो जाते कि बसें गिरने से बार बार बचती थीं। हमारी बस भी कई बार खड्ड में गिरते गिरते बची। आगा साहब तो बड़े खुश थे क्योंकि हर बार पारसी लड़की खौफ से चीख मार कर इनके साथ लिपट लिपट जाती थी, लेकिन उनकी बेगम ने ड्राइवर को खूब आड़े हाथों लिया था। एक सख्त तदीबी तकरीर के बाद उन्होंने ड्राइवर को ऐसी तवील और पचीदा गाली दी कि इस फन में मुश्ताक होने के बावजूद वो हक्का बक्का रह गया था और शर्म से उसके कान सुरख हो गए थे। हमारी खानम दरअसल मलका दशनाम है। आगा साहब ने पंडित प्रोफेसर को मुखातब करके सब मुसाफिरों को मुतला किया। बड़े बड़े महाराजा और नवाब उसके सामने पानी भरते हैं। एक बार श्री महाराजा बहादुर ने चश्मा शाही पर गाली गलोच का बड़ा शानदार टूर्नामेंट मुनक्कद किया था। महाराजा पटाला, महाराजा अलवोर, नवाब ऑफ पालनपुर, महाराणा झालादार सब मौजूद थे। गालियों का मुकाबला शुरू हुआ। सब ने अपने में कमाल के जौहर दिखाए, लेकिन ट्रॉफी हमारी खानम ने ही जीती। मेरी पंडित प्रोफेसर ने घिघिया घिया कर अपने गले से कुछ आवाज़ें बरामद करके हसब तौफीक दाद की। जानते हो खानम की गाली कितनी तवील थी? आगा साहब ने डांट कर पूछा। पंडित साहब खुश आमदाना हैरत अस्तजाब से जबड़े लटका कर बैठ गए, जैसे बकरी का मेमना घास वसूल करने के लिए थूथनी खोलता है। खानम की गाली 1.5 मिनट दराज थी, पूरी 1.5 मिनट, आगा साहब ने ऐलान फरमाया। पंडित जी एक बार फिर ताज़ा हुक्के की तरह गुड़गुड़ाए और आगा साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए फन दशनाम तराजी के हक में एक आलमाना तकरीर झाड़ने के लिए पर तोलने लगे, लेकिन ड्राइवर ने इन्हें मोहलत ना दी। उधमपुर आ गया और बस लारियों के अड्डे पर जा रुकी। उधमपुर के अड्डे पर बड़ी रेल पहल थी। बस रुकते ही पुलिस के कुछ सिपाहियों ने इसे घेरे में ले लिया और ये खुशखबरी सुनाई कि श्रीनगर में हैजा की वबा फूटी हुई है, इसलिए इनाकुलेशन सर्टिफिकेट हासिल किए बगैर कोई शख्स आगे सफ़र नहीं कर सकता। उधमपुर की फर्शनास म्यूनसिपलिटी ने इनाकुलेशन का बंदोबस्त भी अड्डे पर ही कर रखा था। एक खुली जगह एक چھولداری نصب تھی جس کے باہر بورڈ پر جلی حروف میں یہ تحریر تھی، خوش آمدید جی آیا نو، حیضے کا ٹیکہ یہاں سے مفت لگوائیے، اس طرف خادم سیاحان میونسپل کمیٹی ادھم پور۔ اندر ٹیکہ لگانے کا کوئی سامان نہ تھا، البتہ ایک بابو بہت سے خالی فارم اور ہیلتھ افیسر کی مور لیے ضرور بیٹھا تھا، ہر مسافر سے وہ 3 روپے نذرانہ وصول کرتا تھا اور فارم پر کر کے ان پر مہر لگا کے ان کے حوالے کرتا تھا، باہر 1 روپے والا پولیس لیتا تھا، 8 آنے کلینر مانگتا تھا، اور اس طرح 4.5 روپے میں وبائے حیضہ کا انسداد کرنے کے بعد مسافر کو بس میں دوبارہ داخلہ نصیب ہو جاتا تھا۔ ہم اس سعادت سے محروم رہے کیونکہ ہم تو پلیگ سے بچنے کے لیے جموں سے نکلے تھے، حیضہ میں مبتلا ہونے کے لیے سری نگر نہیں جا رہے تھے، اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور اگلے روز ایک دوسری لاری سے جموں واپس لوٹ آئے۔ صفحہ نمبر 35، چمکور صاحب، جموں میں پلیگ، سری نگر میں کالرا، اب ہماری جائے پناہ چمکور صاحب تھی، تجویز ہوئی۔ جموں توی کے ریلوے اسٹیشن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے تو ریل کا یہ پہلا سفر مجھے بڑا افسانوی محسوس ہوا، ریل چھوٹتے ہی میں کھڑکی سے باہر منہ نکال کر بیٹھ گیا اور گرد و پیش کے عجیب و غریب ماحول کو دیکھنے لگا، نزدیک کے کھمبے پر برق رفتاری سے پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے، دور کے درخت بڑے آرام سے ہمارے ساتھ ساتھ آگے کی طرف رواں تھے، وسطی کائنات ساکت و جامن تھی۔ کچھ دیر کے بعد پہیوں کی گھرگھراہٹ میں تال اور سر کے ساتھ تبلوں کی تھاپ بجنے لگے اور انجن کے بھپا بھک چھکا چھک میں مجھے موسیقی کی بہت سی دھنیں سما گئیں۔ ریل کی پٹری میں جب کوئی موڑ آتا تھا تو ٹرین ربڑ کے سانپ کی طرح بال کھا کر اٹکیلیاں کرتی گزر جاتی تھی۔ ایک موڑ پر میں ٹرین میں لگے ہوئے ڈبوں کی تعداد گن رہا تھا کہ شان شان شوں شان کر کے انجن نے بڑے زور زور سے دھواں چھوڑا اور کولے کا ایک ذرا میری آنکھ میں پڑ گیا۔ ماں آن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پلکوں کے اندر دیا سلائی رگڑ کی جلا دی ہو، آنکھیں مل مر کے میرا برا حال ہو گیا تھا، دائیں آنکھ بوٹی کی طرح سرخ ہو کر سوج گئی تھی۔ سزا کے طور پر مجھے کھڑکی والی سیٹ سے اٹھا کر کمپارٹمنٹ کے درمیان ایک محفوظ جگہ بٹھا دیا گیا۔ چھوٹے بڑے اسٹیشن آتے تھے، ٹرین رکتی تھی، گارڈ سبز جھنڈی لاتا تھا، انجن سیٹی بجاتا تھا اور گاڑی پھر روانہ ہو جاتی تھی۔ پلیٹ فارموں پر بڑی چہل پہل تھی، کلی اور مسافر بدحواسی سے ادھر ادھر بھاگتے تھے، چھابڑیوں اور خوانچے والے بھانت بھانت کی آواز سدائیں لگاتے تھے، ہندو پانی، مسلمان پانی، گرم پوری، گوشت روٹی، لیمن برف میں دور ہی دور بیٹھا اس رونق کو بس سے حسرت و یاس دیکھتا رہا اور دل میں عزم بل جزم کر لیا کہ جب کبھی میں اکیلا سفر کروں گا تو ہر بڑے اسٹیشن پر اتر کر کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤں گا، چلتی ہوئی گاڑی سے لپک کر پلیٹ فارم پر اترا کروں گا اور جب ٹرین پھر حرکت میں آئے گی تو چھلانگ لگا کر دوبارہ اس میں سوار ہوا کروں گا۔ گارڈ کے روب اداب نے میرے دل پر گہرا اثر کیا، اس کے ایک ادنا سے اشارے کے سامنے گاڑی کا جو ہیکل انجن بالکل بھی بس تھا، سفید وردی، سفید ٹوپی، سرخ اور سبز جھنڈیاں، منہ میں وسل، گارڈ کی آن بان مجھے خوب بھائی اور میں نے جموں کی ہری ٹاکیز میں گیٹ کیپری کا ارادہ ترک کر کے ریلوے گارڈ بننا اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ لدھیانہ گزر کر غروب آفتاب کے بعد دو راہے کا چھوٹا سا اسٹیشن آیا، یہاں پر گاڑی صرف نصف منٹ کے قریب رکتی تھی، ہم نے جلدی جلدی سامان باہر پھینکا اور خود بھی کود کود کر نیچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہو کا عالم تاری تھا، نہ روشنی، نہ کلی، نہ کوئی سواری، ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار کے بڑی مشکل سے نہر سر ہند کے گھاٹ پر پہنچے جو اسٹیشن سے 3-4 میل کے فاصلے پر تھا۔ چمکور صاحب سے ہوتی ہوئی روپڑ جانے والی کشتی تیار کھڑی تھی، کشتی مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، ملاحوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹانگیں سکیڑی، کسی کے بازو بینچے، کسی کا بچہ اٹھا کر اس کی گود میں ڈالا اور ہمیں بھی ٹھونس ٹھانس کر کشتی میں ایسے فٹ کر دیا جس طرح بوری میں فالتو آٹا دب دبا کر بھرا جاتا ہے۔ آدھی رات کے قریب ملاحوں نے ہر مسافر سے 2-2 آنے چراغی وصول کی، ایک دھندلی سی لالٹین جلا کر ایک بانس سے لٹکا دی اور کشتی نے لنگر اٹھا دیا۔ ہمارا سفر پانی کے بہاؤ کے خلاف تھا، اس لیے ایک موٹا سا لمبا سا رسا لے کر اس کا ایک سرا کشتی سے باندھا ہوا تھا اور دوسرے سرے پر 2 بیل جوتے ہوئے تھے، ایک ملا سمادار لاٹھی کاندھے پر رکھے اور دوسرا ہاتھ میں سرکنڈے کی مشل جلائے بیلوں کو ہانکتا ہوا کنارے کنارے چل رہا تھا۔ کشتی کو کئی جگہ روک کر اس کے تلے میں بھرا ہوا پانی نکالا گیا، بہلول پور پہنچ کر بیلوں کی جوڑی تبدیل ہوئی، جب پھوپ پھوٹی تو صبح کی زرکار کرنوں میں نہر کے کنارے دور تک ایک طویل قطار نظر آتی جیسے لوہے اور پتل کی گاگروں کو الٹ کر زمین پر رکھا ہوا ہو۔ جب نزدیک پہنچ کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ گاگریں نہ تھیں بلکہ سکھوں کی قطار تھی، जो नहर की तरफ पुश्त किए एक दूसरे से थोड़े फासले पर बैठे थे और सर झुकाकर बड़े खुशू से बरसरे आम रफाए हाजत फरमा रहे थे। जब कश्ती उनके करीब पहुंचती तो चंद से जवान हमारी तरफ मुंह करके नंग तरंग खड़े हो जाते और मुंह से बकरे बुल बुला बुला कर बड़े फख्र से अपने पोशीदा इलम अलबदान की तशरीह करने लगे। कश्ती में सवार औरतों ने अपने चेहरों दुपट्टों से ढांप लिए और मर्द खांस खांस कर एक दूसरे से खिसियानी बातें करने लगे। मुल्ला सब मुसलमान थे। एक नौजवान को जो तो आया तो इसने भी अपना तहमत बांध उठाकर सिखों को तुर्की पर तुर्की जवाब देने का इरादा किया, लेकिन उमर सीधा मुल्ला ने डांट डपट कर इसे बिठा दिया। जब कश्ती उनके सामने से गुजर गई तो सिख नौजवान भी नहर की जानब पीठ करके बैठ गया और इस सर नौ फितरत से हम कलामी में मसरूफ हो गए। दोपहर के करीब कश्ती चमकौर साहब पहुँच गई। दादी अम्मा ने हमें खुश आमदीद कहा, अपने पल्लू से खोल कर कुछ लड्डू खाने का दिया। उनकी उम्र कोई 104 वर्ष के करीब थी। दांत मजबूत थे, नज़र तेज़ थी और चलने में वो हमसे भी ज़्यादा सुबक रफ्तार थी। दादी अम्मा के कदीमी मुलाजम करम बख्श ने हमारा सामान उठाया, वो भी 70 वर्ष से ऊपर था। छुदरी दाढ़ी के बाल ऐसे मोटे मोटे थे जैसे चेहरे से रस्सियाँ लटक रही हों। सामान के बोझ तले भी इसे पसीना तक नहीं आ रहा था। उसके देसी जूते लोहे के खुरपे की तरह सख्त थे। उनके जूते खोलकर मेरे हवाले कर दिए गए और आग की तरह तपती हुई रेत पर नंगे पांव यूं खरमा चलने लगा जैसे सरसब्ज घास पर चहलकदमी कर रहा हो। करम बख्श के पांव का तल्ला नरमी के जूते के तल्ले से भी ज़्यादा सख्त और मजबूत था। वो खजूर और किक्कर के बिखरे हुए कांटों पर बेतकल्लफ बरहना पा चलता फिरता रहता था। शदीद सर्दियों के ज़माने में अक्सर उसके पांव की एड़ियों की खुश्क जिल्द होकर फट जाया करती थी। करम बख्श फौरन गांव के मोची के पास जाता था और जिस तरह फटे हुए जूतों को गांडा जाता था ऐन इसी तरह अपनी एड़ियों की जिल्द में भी खुशी खुशी टांके लगवा कर आया करता था। चमकौर साहब में बहुत से गुरुद्वारे और एक खानकाह थी। गुरुद्वारों में सबसे ऊँचा दर्जा कलगी वाले बादशाह गुरु के गुरुद्वारे का था। गुरुद्वारों की रवायत के मुताबिक पंजाब के एक मुसलमान सूबेदार ने गुरु के दो कमसन साहबजादों को इस गुरुद्वारे की एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। साहबजादों के नाम बाबा अजीत सिंह और छज्जार हरी थे। अब इन्हीं के नामों पर इस गुरुद्वारे के साथ बाबा अजीत सिंह झज्जार हरी खालसा स्कूल भी कायम था। दूसरे गुरुद्वारे का नाम दमदमा साहब था। यहाँ पर किसी गुरु साहब ने तबल बजाया था। एक मुकद्दस मुकाम का नाम मसवाक साहब था, जहाँ पर एक गुरु साहब ने अपने दंदान मुबारक पर मसवाक फरमाई थी। एक और पकीदा जगह झाड़ साहब कहलाती है, जहाँ पर किसी गुरु साहब ने तकरीबन गलबन कुछ और किया होगा। चमकौर साहब की अकलौती खानका बाबा साहबा थी। बाबा साहबा दरअसल बाबा शहाबुद्दीन का उर्फ़ आम था। वो अपने ज़माने के साफ़ी करामत बुज़ुर्ग माने जाते थे। जहाद व अबादत के अलावा बाबा शहाबुद्दीन अपने इलाके के काजी भी थे और कस्बे माश के लिए नील का कारोबार करते थे। बाबा साहब के सहन में नील के भरे हुए मटकों की कतारें पड़ी रहती थी। एक रोज़ आंधी रात के सिखों के गुरु अचानक बाबा साहब के हाथे में आ गए। गुरु साहब आलम रुपोशी में जान बचाते फिर रहे थे, क्योंकि उनके तौक़ में सारे हिंद का हाकम फौज के एक भारी बार जमीयत से लेकर निकला था। गुरु साहब ने कहा, बाबा जी अगर मैं इस जलती हुई भट्टी में कूद जाऊं तो शायद मेरी रूहानियत मुझे आग के ज़रर से बचा ले, लेकिन सर हंस के मुग़ल हाकम से बचने के लिए इंसानी वसीला दरकार है। अगर तुम्हारे पास कोई वसीला हो तो बताओ। बाबा साहब ने जवाब दिया, गुरु जी महाराज वसीला रूहानी हो या इंसानी, खुदा के हुक्म के बगैर मैसर नहीं आता। आप अल्लाह का नाम लेकर नील के इस मटके में बैठ जाएँ, शायद खुदा इसी में बेहतरी करे। गुरु साहब गाढ़े गाढ़े नील से भरे हुए एक मटके में बैठकर, बाबा साहब ने मटके का मुंह कपड़े की जाली से ढांप दिया। सर हिंद के हाकम अपनी फौज की मदद से चमकौर साहब का कोना खोना छान मारा। गुरुद्वारों के ग्रंथों और नहेंग अकालियों को ज़मीन पर लटा लटा के खूब पटवाया। जब बहुत से घरों की तलाशी ली गई, गन्ने के खेतों को काट काट के रख दिया। कुछ सिपाही सलाम करने के बहाने बाबा शहाबुद्दीन के हाँ भी आए। बातों बातों में उन्होंने बाबा साहब के कमरे का जायजा भी लिया और मायूस होकर लौट गया। रातों रात मुगल फौज अपनी मुहिम पर आगे बढ़ गई। सुबह सवेरे बाबा साहब ने गुरु साहब को नील के मटके से बाहर निकाला और लिबास तब्दील करने के लिए नए कपड़ों का जोड़ा पेश किया। गुरु साहब ने कहा, बाबा जी अब मैं कभी सफ़ेद कपड़े ना पहनूंगा, आज से नीला रंग मेरे पंथ का रंग मुकर्रर हुआ। गुरु साहब बाबा शहाबुद्दीन का शुक्रिया अदा करके रुख्सत हुए। चंद रोज़ बाद चमकौर के गुरुद्वारों के ग्रंथी एक वफ्त की सूरत में बाबा साहब के पास आई। उन्होंने बड़े अदब न्याज से बाबा साहब की खिदमत में रेशम की एक थैली पेश की। इस थैली में गुरु साहब के हाथ का लिखा हुआ एक फरमान था, जिसमें सारे सिख पंथों की तरफ से बाबा शाहबुद्दीन को अपना मोहसन माना हुआ था, और इस आसान के बदले गुरुद्वारों की कुछ ज़मीन भी दामी तौर पर बाबा शाहबुद्दीन और उनकी औलाद के हक में वक्फ कर देने की पेशकश थी। बाबा साहब ने इस फरमान की पुष्ट पर गौरमुखी ज़बान में एक तहरीर लिख दी, जिसका मफहूम यह था, अगर ये मौका गुरु साहब के साथ जहाद का होता तो बाखुदा शाहबुद्दीन खुद अपने हाथ से उनका सर कलम कर देता, लेकिन ये जंग हाकम और महकूम का सियासी तनाज़ा है। गुरु साहब के साथ मैंने कोई एहसान नहीं किया, फ़कत अपना अखलाकी फ़र्ज़ अदा किया है। इसकी उजरत मेरे लिए हलाल नहीं। ज़मीन की पेशकश को मैं अपनी आल औलाद पर हमेशा के लिए हराम करार देता हूँ। अलबत्ता मेरी ख्वाहिश है कि चमकौर की हदूद में सूर का गोश्त लाना बंद हो जाए। अगर सिख कौम ये दरख्वास्त मान ले तो ये उसकी ऐन अनायत होगी। सिखों ने बर रज़ाए व रगबत इस शर्त को कबूल कर लिया, और उस वक़्त से चमकौर में सूर के गोश्त की सख्ती से ममानत हो गई। चंद साल बाद हज़रत बाबा साहब की वफ़ात हुई तो दूर दूर से हज़ारों सिख हिंदू और मुसलमानों के जनाजे में शिरकत के लिए हाज़िर हुए। अकीदतमंदों ने अपने हाथ से बाबा साहब का मकबरा तमीर किया। मकबरा एक सादा सी चार दीवारी पर मुश्तमिल था। बाबा साहब की वसीयत के मुताबिक उस पर छत न डाली गई। बाबा साहब की ज़िंदगी ही में ये रस्म चल निकली थी कि गाँव में आने या गाँव से जाने वाली हर बरात उनकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होती थी। बाबा साहब के कच्चे चावलों में शक्कर मिलाकर एक एक मुट्ठी बरातियों में बांट देते थे। हिंदू सिख मुसलमान सब इस तबरक को दुल्हा दुल्हन के लिए नेक फाल समझते थे। बाबा शाहबुद्दीन की वफ़ात के बाद इस रस्म में और भी शिद्दत आ गई। अब हर बरात बाबा साहब के मज़ार पर हाज़िर होती। बराती लोग कच्चे चावलों में शक्कर मिलाकर मज़ार पर फेंकते और फिर उनको इकट्ठा करके दोबारा बरातियों में तकसीम कर दिया जाता। चावलों के जो दाने मज़ार पर पड़े रह जाते थे उनको चुगने के लिए बहुत से कबूतर आम तौर पर वहाँ जमा रहते थे। बाबा साहब के साथ कबूतरों की अकीदतमंदी के मतलब तरह तरह के किस्से बन गए, और रफ्ता रफ्ता कबूतरों को इतना तकद्दस हासिल हो गया कि चमकौर साहब की हदूद में उनका शिकार हराम शुमार होने लगा। जिस मकाम पर बाबा शाहबुद्दीन का मज़ार वाक़ है उसके कुछ फासले पर एक वसी और रीज मैदान फैला हुआ था। इस मैदान को पंडवाना कहते थे। चमकौर के खुश फहम बड़े बूढ़े को इस बात का यकीन था कि कोरू पांडो की माह भारतीय लड़ाई इसी मैदान में हुई थी। ज़रा सा क्रेदने पर इस मैदान से तरह तरह के पुराने सिक्के और जंगी हथियार मिल जाते थे। यूँ भी तेज़ बारिश के बाद जगह जगह इंसानी ढांचों की हड्डियाँ और खोपियाँ बाहर निकल आती थीं। अगर तेज़ हवा हो तो इन हड्डियों की रगड़ से जाब या चिराग से जल उठते थे। बरसात की अंधेरी रातों में ये रोशनियाँ ख़ास तौर पर माफूक अलफितरत समा बांध देती थीं। रफ्ता रफ्ता ये मशहूर होने लगा कि ये रूहानी दिए भी बाबा साहब की करामत से रोशन होते हैं। चुनाचा जब कभी रात के वक्त पांडवाना के मैदान में बाबा साहब की ये करामत जगमगाती तो गाँव की बड़ी बूढ़ियाँ सर ढाँप कर कोठों पर चढ़ जाती और दामन फैला फैलाकर बाबा साहब से बरकत की दुआएँ मांगने लगती। बाबा शाहबुद्दीन की वफ़ात के बाद उनके अकलौते फरजंद भोले मियाँ ने नीर का कारोबार संभाला। भोले मियाँ का असल नाम कासम अली था। वो महज दीनदार थे, दुनियादारी से कतई बेगाना थे। सीधी सादी सब्र शुक्र की ज़िंदगी बसर करते थे। उनके बाद उनके बेटे और पोते भी इसी डगर पर साबित कदम रहे, लेकिन चौथी पुश्त में जाकर चौधरी मेहताब दीन ने एक नया रंग पकड़ा। सबसे पहले उन्होंने गुरुद्वारों के ग्रंथियों से मिलकर ज़मीन की पेशकश पर हक जमाने की कोशिश की। यहाँ से नाकाम होकर इन्होंने नील का एक पुराना मटका लेकर इसे फूलों से खूब सजाया। घर में के सहन में एक जरकार शामियाने तान कर उसके नीचे एक खूबसूरत तख्त बिछाया। उस तख्त पर रेशमी तकियों और गद्दों के दरमियान इस मटके को जमा के रख दिया। दो खुश पोश नहंग अकाली मुलाजम रखे जो मोर छल पंख उठाए हर वक्त हाजिर रहते थे और बड़े अदब से मटके पर आस्ता आस्ता पंखा लाते रहते थे। चौधरी मेहताब दीन ने चार दांग आलम में ये चर्चा कर दिया था कि यही वो मुकद्दस मटका है जिसमें बाबा शाहबुद्दीन ने गुरु साहब को छुपा के रखा था। पहले इक्का दुक्का सिख मटके की ज्यारत के लिए आए, फिर अकीदतमंदों देवियाँ चढ़ावे के फूल हलवा मिठाइयाँ और फल लाकर दर्शन करने लगी। चंद महीनों के बाद जब सिख सभा के मौका पर चमकौर में सिखों का सालाना इजतमा हुआ तो हज़ारों ज़ाहरीन ने मटके को तज़ीम दी। चौधरी मेहताब दीन ने तज़ीम देने का अमली तरीका यह राइज कर रखा था कि अकीदतमंद पहले हाथ जोड़कर मटके को नमस्कार करते, फिर घुटनों के बाल झुककर इसे बसद अदब एहतराम छूते थे और आखिर में चांदी के रुपयों या सोने की मोहरों का नजराना मटके में डाल देते थे। पहली सिंह सभा पर 2000 रुपये जमा हुए, दूसरी पर 5-6 हज़ार और इसी तरह बढ़ते। आखिर ऐसा वक्त भी आया कि सिंह सभा के रोज़ मटका बार बार भरता और बार बार खाली होता था। 5-7 वर्ष में चौधरी मेहताब जी ने एक मामूली नील फरोश से तरक्की पाकर लखपति रईस बन गए थे। चमकौर के इर्द गिर्द इन्होंने सैकड़ों एकड़ अराजी खरीद ली और बाबा शहाबुद्दीन के कच्चे मकान को मसमार करके एक अजीमों एक आलीशान हवेली तमीर करवा ली, जिसके चुबारे की छत बुलंदी में आसपास के गुरुद्वारों के कर्ज का मुकाबला करती थी। ग्रंथियों को यह गुस्ताखी नागवार गुजरी। यूँ भी कुछ अरसे से जुमला ग्रंथी चौधरी महताब दीन से खार खाए बैठे थे। मटके की बढ़ती हुई मकबूलियत ने गुरुद्वारों की आमदनी पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया था और चौधरी महताब दीन की रोज़ अफजाओं अमारत में ग्रंथियों को अपने हकूक का खून नजर आ रहा था। इधर सिखों में सलाह मशवरा शुरू हुए के चौधरी महताब दीन के चुबारे की बुलंदी गुरुद्वारों के कलश से बहरहाल कमतर होनी चाहिए। उधर चौधरी साहब ने नहले पर दहला मारा और इस साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने अपने चुबारे की छत पर सिख पंथ के बेशुमार झंडे गाड़ दिए। अंदर वही जर कार शमियाने तान का तख्त पोश बिछाया और तख्त पोश पर रेशमी कद्दों और गदेलों के दरमियान नील का खाली मटका जमा के रख दिया। अब यह कमरा चुबारा मटका साफ कराने लगा और सिखों में दूर दूर तक शोर तो हो गई। वाह भी वाह, चौधरी महताब दीन ने कमाल कर दिया, अपने खर्च पर मटका साफ करिए ऐसा बुलंद व बाला चुबारा बनाया है कि चमकौर के गुरुद्वारों को भी मात कर दिया। हर सिंह सभा के बाद चौधरी महताब दीन सोने चांदी के सिक्कों को गला कर सलाखों में ढाल लेते थे और इन सलाखों को तांबे की गागरों में भर कर अपनी हवेली की अंदरूनी दीवारों में खुफिया तौर पर गाड़ देते थे। इस खजाने की हिफाजत के लिए चौधरी साहब ने एक नराली तरकीब निकाली। उन्होंने 8-10 कारी और हाफिज़ कुरान जमा करके मुलाजम रख लिए। अंदर के कमरे में हर कारी बारी बारी 2-2, 3-3 घंटे बाबा शहाबुद्दीन के लिए कुरान खानी करता था। 1-2 नौकर उनकी खिदमत पर हमा वक्त मामूर रहते थे। चुनचा अंदरूनी कमरे में 24 घंटे चिराग जलता रहता और कुरान खानी होती रहती थी। एक पंथ दो काज, हम खरमा व हम सवाब, बाबा शहाबुद्दीन की रूह को साले सवाब भी होता रहता था और चौधरी महताब दीन के गड़े हुए खजाने की हफाजत भी बानवान शाइस्ता होती रहती थी। दिन रात कुरान खानी की खबर फैली तो लोगों ने फर्त से हैरत व मसरत से अपनी उंगलियां काट ली। वाह भाई वाह, चौधरी महताब दीन की क्या बात है, बाबा साहब की रूह पाक करने के लिए दिन रात चिराग जलाता और कुरान शरीफ पढ़वाता है। चौधरी साहब ने भी अपनी सादत मंदी का मजीद सबूत देने के लिए बाबा शहाबुद्दीन के मज़ार की मरम्मत पर बेजराए पैसा रुपया खर्च किया। कब्र का तवीज बेशभाग संगे मरमर का बनवाया और फर्श पर दीवारों पर बेशुमार छोटे छोटे खुशनुमा शीशे जड़वा दिए। अब मज़ार पर एक चिराग जलता था, फर्श और दीवारों पर उनके सैकड़ों अक्स जगमगा उठते थे, अकीदतमंद शरशार होकर झूमते थे और चौधरी महताब दीन की अमारत और सहावत के गुण गाते थे। दीन की तरफ से बेनियाज होकर अब चौधरी महताब दीन ने अपनी दौलत का रुख दुनिया की तरफ भी मोड़ना शुरू कर दिया था। हवेली के बड़े हाथों में सुबह शाम दरबार लगाकर बैठने लगे। सुरख बनात पर सुनहरी गोट का शमियाना लगता था। नकराई पायों वाली दरकार मसनत पर चौधरी साहब खुद बैठते थे, पीछे 8-10 चौबदार शामदार असालिया मुस्तद खड़े रहते थे, दाएं बाएं खुश पोशाक खादम दस्त बस्ता हाजिर रहते थे। सामने दरबारियों की नशिस्तें थीं और दरबारियों में कुल आउज जनिय मलाओं शरादों खाने वाले पंडितों और भंग के रिसा नहंग कारियों की अक्सरियत थी। इन लोगों को अपने दरबार से व्यवस्था रखने के लिए महताब दीन तरह तरह के पापड़ बेलते थे। मौलवियों के लिए 2 वक्त पुलाव गोश्त और मुर्ग पकते थे। पंडितों के लिए पूरी कचूरी हलवे और खीर का दौर चलता था। अनहंग कारियों के लिए बड़े बड़े कुंडों में भंग भगोई जाती थी और बाल्टियां भर भर के तकसीम होती थी। यूं भी गर्दन वाह के 28 गिरे रस्सागीर और नामी ग्रामी चोर अचके वक्तन फवक्तन हाजिर होते रहते थे और चौधरी महताब दीन के साथ जाती रवाबत कायम रखते थे। अपनी नवाबी का मुकम्मल ठाठ जमाने के लिए चौधरी साहब ने 6-6 फुट के 50 तनमंद घुड़सवारों का दस्ता भर्ती की और अपनी सवारी के लिए एक बूढ़ा सा हाथी भी कहीं से खरीद लाया। इस हाथी पर चांदी का उदा लगा के चमकौर के गली कोचों में हवाखोरी के लिए निकला करते थे। मजाफात में अपनी जमींदारी का दौरा करने के लिए वो और उन कमरा रथों पर सवार होता था। इन रथों के लिए उन्होंने हरियाणा के चौकचबंद बैलों की खूबसूरत जोड़ियां पाल रखी थी। जब बैल रथों में जुतते थे तो उन पर जर बफ्त के झोल डाले जाते थे। गले में चांदी की नन्नी नन्नी घंटियाँ लटकती थी और सिंगों पर सोने के खोल चढ़ाए जाते थे। अपने बैलों से चौधरी महताब दीन को खास रुखत थी। हर सुबह वो उनका चारा अपने सामने डलवाते थे। दिन में कई बार उन पर फेरा होता था और हर जमेरात को खालस घी और शक्कर में मकई की रोटी की चूरी कूट कर इन्हीं खिलाई जाती थी और रित खींचने के बाद बैलों को पानी में अर्क गुलाब का अर्क मिलाकर पिलाया जाता था। जूं चूं दौलत की रेल पहल बढ़ती गई। चौधरी मेहताब दीन की दिलचस्पियां भी घोड़ों बैलों राथियों के की दुनिया से निकलकर अपनी लाज जोनियों के लिए नए नए मैदान मारने लगी। तबीयत में इकतदार की हवस और दिमाग पर अमारत का भूत सवार था। उनकी सबसे अजीज ख्वाहिश थी कि चार दांग आलम में इनका नाम का ढंका बजे, जिस तरफ से वो गुजर जाएं लोग उंगलियां उठा उठा कर कहें ये चौधरी मेहताब दीन की सवारी जा रही है। चौबारा मटका साहब के मालक, राजों के यार गार, महाराजों की नाक के बाल, चौधरी मेहताब दीन जिनके जाहो जलाल और तजक व अहतशाम के सामने सारे माजे में किसी और का चिराग नहीं जल सकता। लैलाए आरजू के इस जुनून में चौधरी साहब ने सबसे पहले रोपड़ के राजा भूप सिंह को बड़ी खुशामद से चमकौर साहब तशरीफ लाने की दावत दी। भूप सिंह को महाराजा रणजीत सिंह का ने रोपड़ का हाकम मुकर्रर करके भेजा था। दरियाए सतलुज के किनारे इस छोटे से शहर की अहमियत इब्तदा में सिर्फ इतनी थी कि यहाँ से पटियाला, जनेद और नाभा के राजवाड़ों पर नज़र एहतसाब रखना आसान था। रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ का दाम इकतदार फैलता फैलता दरियाए सतलुज तक पहुँच गया और अंग्रेज़ और सिखों के दरमियान एक सरहदी शहर की हैसियत से अब रोपड़ को बड़ा अहम मुकाम हासिल हो गया। राजा भूप सिंह ने इस सूरत हाल से पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों के खिलाफ रणजीत सिंह के साथ और रणजीत सिंह के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ उसने साजबाज का कुछ ऐसा जाल बुना कि दोनों भूप सिंह को अपना जिगरी दोस्त मानने लगे और साजिशों के इस अलझाव से भूप सिंह रफ्ता रफ्ता रोपड़ का खुद मुख्तियार हुक्मरान सा हो गया। लाहौर का दरबार और अंग्रेज़ों के एजेंट राजा भूप सिंह को मुँह मांगी रकमें भेजते रहते थे, जिन्हें वो शराब कबाब और औरत पर बेजराए खर्च कर डालता था। अगर कभी रकमें वसूल करने में होने में तखीर हो जाती तो भूप सिंह के सिपाही रोपड़ के गर्दनवाह में निकल जाते और दिन दिहाड़े डाके डाल के सोना चांदी और गल्ला के अलावा गाय भैंसों घोड़ों और जवान औरतों को भी एक ही लाठी से हांग लाते थे। राजा भूप सिंह अरसा से चौधरी मताब दीन की दिन दुगनी रात चुगनी इमारत के चर्चे सुन रहा था। इसे वो तिलस्माती मटका देखने का भी शौक था जो साल में कई बार दौलत के अनबार उगलता था। इसके अलावा चमकौर साहब के मुकद्दस गुरुद्वारों की ज्यारत भी एक बहाना थी। चुनचा जब भूप सिंह को चौधरी मताब दीन का दावतनामा मिला तो इसने बसरो चशम कबूल कर लिया। ये सबक सुनकर चौधरी साहब का सरो वफूर मसरत से चकराने लगा और उन्होंने फौरन बाबा शहाबुद्दीन के मज़ार पर हाजिर होकर दो नफल शुक्राना अदा किए। राजा भूप सिंह की खातर तवाज़ो और इस्तकबाल के लिए चौधरी मेहताब दीन ने जिस पैमाने पर इंतजाम शुरू किए वह अपनी मिसाल आप थे। सारे गांव के दौर दीवार पर चौधरी साहब ने अपनी जेब से सफेदी भरवाई, गली कोचों में हलवान बिछवाया, बच्चों को नीले और सब्ज़ रंग की वर्दियाँ सिलवा के दी। वो रंग बिरंगी झंडियाँ लेकर सुबह शाम जुलूस निकालते थे और नारे लगाते की मशक करते थे। हर मशक के बाद इन्हें दूध जलेबी और मोती चूर के लड्डू बांटे जाते थे। पंडवाना के मैदान में राजा भूप सिंह के सवारों और सिपाहियों के लिए खेमों और शामियानों की कतारें इस तादा हो गईं जिनमें सैकड़ों मशलों शमों और फनूसों का अहतमाम किया गया था। गर्द बिठाने के लिए 200 सक्के सुबह शाम चारों तरफ छिड़काव करते थे। छिड़काव के पानी में अरके गुलाब की बोतलें बड़ी फ्याजी से मिलाई जाती थीं। चौधरी मेहताब दीन की हवेली के मर्दाने में राजा भूप सिंह के की रहाइश का बंदोबस्त किया गया था। मेहमान खाने की दीवारों पर अबरक डालकर सफ़ेदी करवाई गई थी। दीवारों पर जरी और कम ख्वाब के पर्दे लटकाए गए थे और फजा को हर लहजा मुअत्तर रखने के लिए कई मुलाजम अत्तर की पचकारियाँ उठाए मुस्तद खड़े रहते थे। राजा भूप सिंह को चमकौर साहब में सिर्फ एक दिन और एक रात क़याम करना था। उनकी आमद से एक हफ्ता कबल राजा साहब के कुछ अफसरान इंतजाम का जायजा लेने तशरीफ लाए। उन्होंने तकरीबन हर चीज़ में कुछ ना कुछ मेन मेख निकाली और राजा साहब के क्याम को आरामदेह बनाने के लिए चौधरी महताब दीन को बहुत से मफीद मशवरों से नवाजा। एक मशवरा ये था कि राजा भूप सिंह के लिए आला दर्जे की शराब कसीर मकदार में मौजूद हो। शराब के साथ कबाब भी लाजमी है, लेकिन गोश्त हलाल ना हो, खालस झटका हो। शराब और कबाब के बाद राजा साहब सिर्फ सूर का गोश्त नोश फरमाते हैं। सूर जवान और फरबा हो और खाने के बाद आला दर्जे के नाच गाने की महफिल बरपा हो तो चौधरी साहब के ज़ौक़ की मेज़बानी पर राजा साहब की खुशनादी की मोहर साबित करना होना अमरे यकीनी है। ये हदायात सुनकर चौधरी मेहताब दीन एक लहजा के लिए सकते में आ गया और उनके लोगों में बाबा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के खून का जो हिस्सा था उसने दम भर के लिए जोश मारा, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल कर बैठ गए और जलाओ जलाल की शोहरत ने मवरसी तोहमात के ताने बाने उधेड़ कर फेंक दिए। चौधरी साहब ने अपना खास रथ दो खुश सलीका مصاحبوں کے ساتھ امبالہ کی طرف بھگایا تاکہ وہ یکتائے روزگار موسیقار جھمکا جان اور جکا دری کی مشہور عالم رقاصہ ترنجن بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لوائیں۔ دونوں کے ساتھ ساتھ 3,000 روپے نقد، ایک ایک جڑاؤ گلو بند اور دو دو شوہانہ جوڑوں کے پر معاملہ طے ہوا، اور پنڈوانہ کے میدان میں ان کے طائفوں کے لیے کئی اور خیمے بھی نصب ہو گئے۔ شراب کے لیے چودھری صاحب نے اپنے گماشتے لدھیانہ روانہ کیے۔ وہاں پر انگریزوں کا پولیٹیکل ایجنٹ کرنل ویڈ تھا۔ وہ ریشہ دوانیوں کے علاوہ در پردہ انگریزی شراب کا بپار بھی کیا کرتا تھا۔ چودھری مہتاب تین کے آدمی اس سے منہ مانگی قیمت پر اعلیٰ درجے کی ولائتی شراب کی 3-4 پیٹیاں خرید لائے۔ فربا اور جوان سور فراہم کرنے کے لیے چودھری صاحب کو البتہ قدرے دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ گرودواروں کے گرنتھیوں کے پاس گیا ہے کہ وہ اپنی وطاست سے منہ مانگے داموں پر چند ایک اچھے سور منگوا دیں، لیکن سکھ گرنتھیوں اور پاٹھیوں نے واہ گرو کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہر چاند چودھری مہتاب الدین نے یقین دلایا کہ عہد نامہ کی شکست و رخت کا وبال خود ان کی اپنی گردن پر ہوگا، لیکن گرودوارہ دمدمہ صاحب کے بوڑھے گرنتھی گیانی کھڑک سنگھ نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔ چودھری مہتاب الدین، تم اپنے آپ کو کس کھیت کی مولی سمجھتے ہو؟ آج مرے کل مرے، کسی کو تمہارا نام بھی نہ یاد رہے گا، لیکن بابا شہاب الدین کا دربار اور سکھ دھرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے معاہدے کو ہاتھ لگانے والے ہم تم کون؟ چودھری صاحب کا بس چلتا تو وہ وہیں کھڑے کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کا منہ نوچ لیتے، لیکن راجہ بھوپ سنگھ کی آمد کے موقع پر سکھوں سے لڑائی جھگڑا مول لینا کرین مسلط نہ تھا۔ چنانچہ چودھری مہتاب الدین خون کا گھونٹ پی کے رہ گئے اور دل ہی دل میں کڑکتے اور جملہ سکھ پنتھ کو گالیاں دیتے واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کوئی درجن بھر چماروں کو جمع کیا اور انہیں توڑے دار بندوقیں اور تیز دھار بلموں سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھیج دیا کہ وہ تندو مند اور جوان سال سوروں کا شکار کر لائیں۔ خدا خدا کر کے آخر وہ روز سعید بھی آن پہنچا جس کے انتظار میں چودھری مہتاب الدین بےقراری سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پر سوار چمکار صاحب تشریف لائے۔ ان کے جلو میں ہاتھیوں، گھوڑوں، شکاری کتوں اور فوجی سپاہیوں کو لام لشکر تھا۔